एक मराठी या हिंदी में जाना माना शब्द है, किसी का निधन हो गया अर्थात उसको अपना भौतिक शरीर छोड़ना पड़ा। भगवान के बारे में बताया गया है अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, और अनिधनम, आज आपको आश्चर्य लगेगा कि तथाकथित बड़े बड़े तत्वदर्शी, फिलोसोफर, साइंटिस्ट ये वेदों की इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई आदि नहीं है। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद एक सिंपल सादा उदाहरण देते हैं, आप इस धरती पर उपस्थित हैं उसका कारण क्या है? आप कहेंगे कारण मेरे मां बाप और कौन, मतलब आपको जन्म किसने दिया? तो मेरे माता पिता ने। आपके माता पिता को जन्म किसने दिया? तो उनके माता पिता ने। फिर उनको किसने जन्म दिया? तो उनके माता पिता ने। क्या आज कोई व्यक्ति है जो इस तरह से शुरुआत तक जा सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप ब्रह्मा जी तक आ जाएंगे। वैसे वो भी पॉसिबल नहीं है, इतनी हमारी मतलब ये टेस्टिंग करते करते हमारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी कम से कम कोई अगर अपनी बुद्धि अच्छी तरह से उपयोग में लाएगा तो ब्रह्मा तक जाएंगे। और कई वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा को विधि कहते हैं, विधि, लोग कहते हैं ना विधि लिखित जो होगा वही होगा, भाई उन्होंने सबका भविष्य उनके कपार पर लिख के रखा है कि जो होगा वही उनके द्वारा लिखा होगा वही होगा। और वो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी को भागवत में नारद पूछते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मेरी उत्पत्ति का कारण आप हैं, और मैंने आपसे पहले और किसी को देखा नहीं यहां पर, तो क्या वो परमेश्वर आप ही हैं? अब आप सोच लीजिए ब्रह्मा जी को कितना बड़ा चांस है झूठ बोलने का, क्योंकि और कोई है ही नहीं वहां पर, किसी ने उनको देखा नहीं है बनाते हुए, उन्होंने जो सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने समय कोई किसी ने देखा नहीं उनको कि ये सामान उन्होंने अपने घर से लाया कि कहां से खुद से बनाया। आज कलयुग में ऐसी स्थिति है कि ये किताब किसी ने पहले लिखी थी, उस किताब को देखकर मैं कुछ अपनी किताब लिखता हूं और लोगों को बोलता हूं कि मेरी किताब ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, फिर दोनों का झगड़ा कोर्ट में जाता है कि पहले कभी छपी थी, ये 75 की है, ये 74 की है। इतना सारा झूठ इस कलयुग में भरा पड़ा है। तथाकथित धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में लोग गुरु बन के बैठे हैं और उनके शिष्य पूछते हैं क्या आप भगवान हो? तो गुरु ने ऐसे वास्तविक उत्तर दिए हैं कि गुरु शिष्य से पूछता है आपको क्या लगता है, तो शिष्य कहता है कि मुझे लगता है कि आप भगवान हो, आपका अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब आज शास्त्र प्रमाण नहीं है, गुरु बाकी गुरु है वो प्रमाण नहीं है, शिष्य प्रमाण है। शिष्य का मतलब है चेले लोग, आपके चहेते लोग, आपकी स्तुति करने वाले, स्तुति पाठक। और सच पूछा जाए तो लोग यही समझते हैं ये व्यक्ति कितना बड़ा गुरु है, क्यों? अरे उसकी सभा में 5 लाख लोग आए थे। होता है कि नहीं कभी अपने मन में भी ये विचार कि इतने लोग एक सभा में आए हुए हैं, मतलब कुछ तो इस व्यक्ति में होगा। और इनका पूरा आध्यात्मिक कैपिटल, आध्यात्मिक विषय वस्तु क्या है कि ये शिष्य कहते हैं कि मैं भगवान हूं, अर्थात वो गुरु भी ऐसे एक दूसरे से धूर्त हैं, चोर हैं, कि वो शिष्य को कहते हैं कि कुछ देर बाद आप भी भगवान बन सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह पर ऐसा खेद विषण अवस्था में कहते हैं इन लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान का मतलब क्या है, इसलिए वो किसी को भी भगवान समझ बैठते हैं। तो भागवत कभी हमसे झूठ नहीं बोलता, और भागवत में एक बार नहीं, ब्रह्मा जी को नारद पूछते हैं कि आप ही तो हो ना वो भगवान, आप ही तो सृष्टि करता हो। ब्रह्मा जी का उत्तर इतना मार्मिक है, वो कहते हैं कि पुत्र मुझे जो भगवान समझता है, अगर आप मुझे भगवान समझते हो तो मैं ये समझूंगा कि आप माया में हो, और मैं उस माया देवी को प्रणाम करता हूं जिसके प्रभाव के कारण लोग मुझे भगवान समझते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, नारायण साक्षात भगवान है। फिर वो पूछते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, वो किस तरह से कैसे चलते हैं, लीला करते हैं, क्या करते हैं। दूसरा प्रसंग आता है जब यमदूत, अजामिल की कथा आप लोगों में से कुछ बहुत तो थोड़ी बहुत तो मालूम होगी आपको कि अजामिल नारायण का नाम लेता है, और नारायण का नाम लेने से यमदूतों को उनके कार्य से वंचित रखने के लिए विष्णुदूत आते हैं, और विष्णु पूछते हैं उससे कि क्यों उसे नहीं लेने जा रहे हम, आप हमारे कार्य में बाधा क्यों हो रहे हैं। बोले ये शुद्ध हो गया है। बोले वाह शुद्ध हो गया, क्या कौन सा यज्ञ किया इसने, कौन सा तीर्थ पुण्य काम किया इसने, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड भरा पड़ा है कितना पापी है ये। तो कहते नहीं ये पापी नहीं है। तो यमदूत अपनी आंखों पर विश्वास ही रख सकते कि वाकई यमदूतों से लोग डरते हैं, शायद हम भी अगर भगवत धाम भगवत मार्ग नहीं आएंगे तो हमको भी डरना पड़ेगा। कई मेडिकल केसेस ऐसे हुए हैं कि पेशेंट की विष्ठा और मूत्र एक साथ इतनी जोर से शरीर से बाहर निकलता है, डॉक्टर इतना जानते हैं कि यह अवस्था तभी हो सकती है जब इतना एक बहुत डरावनी चीज सामने आए, तब ये रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये पेशेंट को इस अवस्था में क्यों हो रहा है पता नहीं। एक हमारे आर्टिस्ट थे इस्कॉन में, परीक्षित दास करके, काफी उनके पेंटिंग्स प्रचलित हैं। तो एक भक्त उनके पिता के बारे में कहानी बता रहे थे, मैंने कहीं छपी पड़ी नहीं है, केवल कानों से सुनी है। उनके पिताजी भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे, फिर देखा कि उनका पुत्र तो हरे कृष्ण में चला गया, तो उन्होंने पूछा ये क्यों तुम जप कर रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो कम से कम जप करने से मृत्यु के समय तो तुमको कोई बचाएगा। तो कह के मृत्यु के समय मृत्यु क्या है, उन्होंने कहा मृत्यु का मतलब जैसे बड़ी निद्रा होती है, आदमी आराम से सो जाता है, वैसे मृत्यु के बाद आंखें बंद होती है, लोग समझते हैं तो कितना देखो कितना शांत सो रहा है वो, अरे उसके पहले क्या क्या हुआ क्या मालूम आपको। तो उनके पिता ने आखिर तक ना तो अपने कभी पुत्र का कहना मानकर जाप किया, कुछ नहीं किया, और वो ऐसे एकदम हेवी बिल्ट बड़े सुदृढ़ शरीर वाले, और हंटिंग करते थे वो, उनके पास बंदूक वगैरह थी। कुछ समय बाद उनकी प्रकृति बहुत कमजोर होने लगी, और कुछ रोग के कारण जब वो कुछ दिन या कुछ घंटे में मरने वाले थे, तो ये भक्त बता रहे थे कि हम लोग उनसे, अब मैं कैसे कहूं कि आप जप करो, कभी उन्होंने कुछ माना नहीं मेरा, लगभग अनकॉन्शियस थे, बेहोश। अचानक उनकी आंखें खुल गई कुछ समय के लिए केवल, और वैसे कमजोर पड़ा व्यक्ति और क्या कर सकता है, लेकिन वो ऐसे एकदम खड़े हो गए और हमसे कहने लगे, गेट मी माई गन, गेट मी माई गन, मेरी बंदूक लाओ। तो हम कह रहे हैं कि पिताजी शांत हो जाओ, क्या हो गया क्या हो गया। बोलो मेरी बंदूक लाओ, बंदूक लाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उनको मैं। अरे किसको मारोगे, क्या करोगे? और वो ऐसे कह तो रहे हैं बंदूक लाओ मेरी, लेकिन आंखों पर डर, मूर्तिमान भय उनकी आंखों के सामने, और वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये मैंने कई भक्तों से सुना है, कई भक्तों ने इनको देखा भी है। तो यमदूत मतलब प्रोफेशनल, जैसे आज हम कह सकते हैं अपना जो भी काम करते हैं प्रोफेशनल ढंग से करते हैं, और उनका रूप रंग भी ऐसे ही दिया जाता है। तो ऐसे यमदूतों को विष्णु तो ने उनके ऊपर प्रहार नहीं किया, कुछ मारा नहीं उनको, अस्त्र नहीं चलाया, लेकिन ये तीनों यमदूत समझ गए कि ये जो चार विष्णु दूत आए हैं, हमारा शरीर तो ऐसे एकदम रफ है और उनके तांबे जैसे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, फैंग्स, सूले और सब कुछ, उनका दारुण रूप ऐसे शास्त्र में वर्णन है, और उनके कंट्रास्ट में विष्णु दूत एकदम सिंपल सादे दिखने वाले, सुकोमल, पद्म पलाश अक्षा, कमल जैसे नेत्र, हाथों में शस्त्र था, चारों हाथों में शस्त्र, लेकिन सुंदर सुकोमल, लेकिन शरीर से प्रकाश। और रात का समय था जब यमदूत अजामिल को लेने गए थे, तो और यमदूत कहते हैं उन विष्णुदूतों को, वी तिमिरा, तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार, अरे आप लोग आए और जैसे मानो पूरा, जैसे रात को कहीं शूटिंग करते हैं सिनेमा का तो बड़े बड़े पावर के लैंप्स लगाते हैं, तो वो कैसे दिखता है, पूरा एक रास्ते का हिस्सा एकदम ब्राइट इल्यूमिनेटेड, तो वैसे वो दिख रहा है। तो उन्हें, आप हैं कौन? किम देवा उपदेवा सिद्ध सत्तमा, आप देवता है क्या, कोई कि कोई देवताओं के असिस्टेंट हैं? उपदेवा, जैसे हम किसी सरकारी कचहरी में जाएंगे कहेंगे आप क्या मैनेजर हो क्या, कि हेड क्लर्क हो क्या, कौन है आप यहां के? तो यमदूतों ने उनका जो ट्रेनिंग एकेडमी था उन्होंने सब कुछ सीख लिया था, उनको भी अच्छा खासा समझा जाता है भक्त कौन है अभक्त कौन है। लेकिन जो भगवान नाम की महिमा है वो थोड़ा पीएचडी लेवल का साइंस है उनके लिए भी, उनको ये नहीं बताते कि भगवान नाम की महिमा क्या है। तो इसलिए भगवान नाम को रहस्यमय बताया जाता है, सबको नहीं मालूम होता। ये महाप्रभु ने आके सबको समझाया है, आप सबको हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम समझते हैं बस ये आपके पास, अरे मंत्र अर्थात कोई ऐसा गूढ़ मंत्र होना चाहिए जिसमें कुछ भ्रम फट स्वाहा ऐसा कुछ होना चाहिए। पुराण में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, गोपनीय मंत्र, ये तो सब लोग जानते हैं ना, तो भी इसमें एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात है। क्या है वो रहस्यमय बात, कोई जानता है? हरे कृष्ण मंत्र इतना सर्वश्रुत है, सबको मालूम है, तो भी उसका रहस्य क्या है? किसके मुख से आप हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे हैं? अवैष्णव मुखोद्गीर्णाम पुत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पय। जैसे कहीं पे दूध का हंडा रखा है और आप सोच रहे हैं कि चलो एक ग्लास पी लेते हैं, और आपने तुरंत आपकी नजर कोने में गई और वहां से एक सांप चला गया, केवल चला गया वहां से, वो आप कहेंगे ए, नहीं नहीं इसको मत छूना, शायद इतने देर इस रूम में कोई नहीं था, ये सांप ने अगर दूध पिया होगा तो। अगर आपने सांप को हंडे के ऊपर देखा तो आप उसको छुएंगे तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन सांप वहां से केवल चला गया तो भी आपके मन में डाउट आ जाएगा कि शायद इसमें होगा कुछ। सर्पोच्चिष्टम का अर्थ है जिसमें सर्प ने अपना उच्चिष्ट डाला है। सर्प का उच्चिष्ट क्या होता है? विष। तो विष मिश्रित दूध दूध का काम नहीं करता, किसका काम करता है? विष का। वैसे अवैष्णव अभक्त के मुख से लिया हुआ हरिनाम वो हरिनाम का काम नहीं करता, वो फिर केवल एक भौतिक शब्द बन जाता है, मंडेन साउंड। जैसे मेरे पास एक काफी प्रसिद्ध एक गायक, उनकी एक दो रिकॉर्डिंग थी और वो कहते हैं कि पंढरपुर जाएंगे, जाता पंढरी सी सुख वाटे जीवा, कि अगर हम जाएंगे पंढरपुर को तो इतना सुख लगता है प्राण को, मेरे मेरे मेरी आत्मा को, कि साक्षात पंढरीनाथ विट्ठल वहां पर दिखते हैं, कितना आनंद आता है। तो भगवान प्रभु अभी उधर हैं, वो सुन रहे थे और मुझसे पूछा उन्होंने, इस व्यक्ति का जीवन देखकर आपको लगता है कि इसको आनंद आता था? वो गा तो रहा है जोर जोर से कि जाएंगे पंढरपुर जाएंगे पंढरपुर, कभी गया है क्या वो, या कभी उसने वास्तविक वो आनंद देखा है? जो पंढरपुर में जो विट्ठल की मूर्ति है उसके उसके जैसी सुंदर और कोई व्यक्ति नहीं है पूरे त्रिनो जगत में। तो वो कह रहे थे वो गा तो रहा है लेकिन क्या वास्तविक उसको मन में भी लगता है ऐसे कि इनके सिवा और कोई सुंदर नहीं है? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, मतलब ना ऐसे नहीं चलता। आप ब्रज के भजन राधे 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 ओ राधे करके, अरे वो आज जैसे राधे गा रहा है वो और कोई कल मदिरा या और उसके भर भी ऐसे गाएगा वो। तो गाने से तो केवल भगवान नहीं आते, जैसे लोग कहते हैं कि बुलाने से भगवान आते हैं, ना बुलाने से नहीं आते, द्रौपदी जैसा बुलाने से आते हैं। तो भाव उसमें वो द्रौपदी का भाव है, तो इसलिए अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, उनके मुख से अगर सुनेंगे तो हम सोचेंगे कोई सिनेमा संगीत और ये हरे कृष्ण मंत्र एक ही तो है। लेकिन प्रभुपाद ने जब न्यूयॉर्क में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण मंत्र शुरू किया तो पहले 3, 4, 30, 40, 300, 400, 3000, 4000 लोग आ गए। कलकत्ता का एक मारवाड़ी बिजनेसमैन ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी ये सब कैसे हुआ? मतलब उनका मन यही था कि इतनी प्रॉपर्टी इतने मंदिर ये सब कैसे आ गया। तो प्रभुपाद ने कहा हम वहां पे गया, वो हिंदी बात कर रहे थे, वो उनको बंगाली नहीं आता था, और हमने हरे कृष्णा किया तो ये सब लोग आया। इसके अलावा प्रभुपाद के पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं वहां पे केवल गया, अर्थात प्रभुपाद की ये नम्रता है। प्रभुपाद ने अपने मन की जो मन की भाषा या मन के जो भाव है वो अपनी कविता में लिखे थे, आचे किचु कार्य तव ए अनुमाने, हे भगवान कृष्ण आप मुझे लेके जा रहे हैं पाश्चात्य देशों में, आपका कुछ कार्य होगा ऐसा मेरा अनुमान है, क्या होगा मुझे पता नहीं है। अब आप मेरी वाणी पर बैठिए, आप मेरी वाणी पर बैठिए और आपका संदेश उन लोगों को सुनाइए। तो अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो मैं कौन ठहरा फिर? काष्ठेर पुतली, मैं एक काठ लकड़ी की पुतली जैसा हूं। नाचाओ नाचाओ से मते, जैसे आपकी इच्छा होगी मुझे नचाओ। तो भक्त को ये भगवान को बताने की इच्छा है, आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचाओ। और ऐसा भक्त देकर प्रभु क्या करते हैं? प्रभु कहते हैं कि जैसे वो नचाता है वैसे मैं नाचता हूं। जैसे गोपियों के बारे में एक पद्यावली में रूप गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं कि ये गोपियां आकर गोपाल छोटे गोपाल से कहते हैं, गोपाल तुम्हारे दांत दिखाओ, तो वो ऐसे करके दांत दिखाते हैं, बोले दो ही हैं बोला हाँ ज्यादा नहीं आए अभी तक। फिर हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करते हैं, नाचो तो नाच के दिखाते हैं। तो बाकी ब्रजवासी सोचते हैं कि ये तो मामूली बात है, कोई भी बच्चा ऐसे करेगा, लेकिन जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये गोपियां पगली जानती है, आप किसको बोल रही है नाचने के लिए, अरे ये साक्षात परब्रह्म है, तो नहीं मानती ये परब्रह्म है करके। तो परब्रह्म है किनके लिए, जो ये सब वेद वेदांत पढ़ते हैं उनके लिए, ये गोपियों का अध्ययन उससे परे जा चुका है। संस्कृत में सुंदर सुभाषित है, मलय पर्वत, ये मलय पर्वत शायद आज का मलेशिया हो सकता है, नहीं सकता मालूम नहीं, लेकिन मलय पर्वत करके एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषितकारों का पर्वत है, और वहां पर किसका वन है, चंदन का। जैसे यहां पर ये जो पेड़ दिखते हैं ना हमारे हैंगिंग गार्डन में, जहां मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, वहां पे एक छोटा सा चंदन का पेड़ है, और मैं देखता हूं कई लोग आके उसको प्रणाम करके जाते हैं। कि एक बार मैंने थोड़ा सा ऐसा टुकड़ा निकाल कर देखा आसपास कोई है नहीं, और मैंने सूंघने की कोशिश की तो वो चंदन का तो कोई गंध नहीं आता। फिर किसी ने बताया कि नहीं, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, फिर उसको काटते हैं, फिर उसके अंदर का जो भाग है वो चंदन है। तो इतना चंदन आजकल दुर्लभ हो गया है। तो मलय पर्वत के ऊपर केवल चंदन के ही वन, चंदन के ही वन है वहां पर। तो वहां की भिल्ली, भिल्ली मतलब वहां जो भिल जाति के लोग है, तो वो भिल जाति की स्त्री है, वो अपना भोजन किसमें पकाती है, चंदन के लकड़ी के ऊपर। तो हम कहेंगे अरे आपको मालूम नहीं, बंबई लेके जाओगे तो 8,000 रुपया किलो भाव आएगा। बोले ये तो क्या लकड़ी है। तो ऐसा ही कुछ है कि जो गोपियां हैं उनको क्या पता कि ये परब्रह्म है क्या है। अपमान या अवहेलना के रूप में नहीं, प्रेम की भावना से। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त से अगर हम वो भगवान का नाम सुनेंगे, उसका जो प्रभाव होगा उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान यमदूतों के पास नहीं था। तो यमदूत ने देखा कि ये विष्णुदूत तो शस्त्रधारी हैं, लेकिन फिर भी उनको मन में लगा कि इनके साथ बहस नहीं करते, मालूम नहीं क्या होगा। पहली बार वो जिंदगी में पहली बार डर गए थे, वास्तविक डर गए थे। तो जब देखा कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, इन्होंने इसको तो पुण्यात्मा बोल दिया है, तो वो इतने विषण हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि कंप्लेन करने के इरादे से अपने बॉस के पास गए, यमराज के पास। और उनका पहला प्रश्न था, क्या आपकी नौकरी चली गई है क्या? तो यमराज ने पूछा, अरे भाई हुआ क्या, क्या आप आजकल आपका कोई सुनता नहीं है क्या, आप क्या स्ट्राइक में हो क्या? तो बोले अरे क्या हुआ तो बताओ। अरे सुनिए, आज आपकी एक आज्ञा को किसी ने हत कर दिया। मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा ज्यादा गुस्सा दिलाना है, अरे मैंने इससे कहा कि केशव प्रभु का मानो, तो वो कहता है कौन होता है केशव प्रभु, तो ऐसे कहने से वो आदमी तो गुस्सा आएगा ना, उसको पक्का गुस्सा आएगा। अरे मेरे बारे में ऐसा कह रहा है वो, अभी देखता हूं उसको मैं। तो यमदूत थोड़े यमराज को कह रहे हैं, आज साक्षात यमराज की आज्ञा को किसी ने नहीं माना, हम तो छोटे लोग हैं, हमारा क्या है, लेकिन आप ये तो हम सहन नहीं कर सकते, सहन। तो यमराज ने कहा क्या हुआ तो बताओ। तो उन्होंने कहा आप जानते हैं, वो कुछ केस नंबर दिया होगा PA 142/SO-MUCH। हम भी अपनी बुद्धि सोचेंगे ना, उनका तो कैलकुलेशन अलग होगा। वैसे राधा गोविंद महाराज जी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहीं से पढ़ा उन्होंने कि यमराज का ऑफिस है ना, केवल ऑफिस हाँ यमराज का, वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। अरे आप सोचिए ना, इतने लोगों का अकाउंट रखना है तो क्या मामूली बात थोड़ी है। और अकाउंट किसका, तो जो काम उन्होंने किया है, जिसको फोटो है लिया है, कुछ रिकॉर्डिंग है, वो नहीं, विचारों का रिकॉर्ड। क्या क्या विचार आए हैं? आप बोलेंगे मैं ऐसे कभी सोचा नहीं. बोला 22 दिसंबर 1994, 4:03. बाप रे, ये लोग तो सब जानते हैं. तो पूछेंगे आप कैसे जानते हैं सब? बोला ऐसा है ना कि आपके विचार हमारे थ्रू आपके पास आते हैं. जो परमात्मा बैठे हैं ना, वो पहले हमको सूचित करते हैं. जैसे ही आपने एक विचार को मन में लाया तो एक कॉपी वहां आती है, फिर आपके पास आती है. या तो ऐसे समझो कि ओरिजिनल हमारे पास आता है, कॉपी आपके पास आती है. तो आप चाहे जितना झेरॉक्स कॉपी को जला दो, उसको मिटा दो, उसकी राख करो, उसको जमीन में गाड़ दो, ओरिजिनल हमारे पास है. तो इतना बड़ा ऑफिस रखना पड़ता है और ये सब है. तो यमराज ने कहा तो क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया? बोला नहीं, उसके बाद क्या हो गया, हम उसको ले जा रहे थे, हमारा रूटीन ड्यूटी था, हमने सब बाकी सब काम कर दिया, वो फांसा डाल दिया, और जैसे उसको लेने वाले थे ये चार लोग आकर हमको सीधा बोले कि मत करो इसको. तो हमने कहा ठीक है. कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे होता है ना, पानी वाले के कहते हैं कि हम यहाँ खोदेंगे, तो बिजली वाले कहते हैं कि नहीं खोदना है, और टेलीफोन वाले कहते हैं कि ना हमको अपना काम करना है. तीनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लेकिन तीनों एक दूसरे को नहीं मानते. तो शायद कभी ऐसे हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे के ऊपर ये करेंगे, लेकिन ये हमको सबूत दे रहे हैं कि ये पुण्यात्मा है. तो ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं था कि एक बार नाम लेने से ऐसा होता है. तो पहला प्रश्न, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है, आप भगवान नहीं हो क्या? वापस वही, आपके आपकी प्रामाणिकता और आपके इंटीग्रिटी का सवाल. यमराज भी एक पद है, यमराज इज ए पोस्ट, एक पोजीशन है. वो यमराज जब विदुर बन के आते हैं तो विदुर का जन्म तो उनको किसी एक ऋषि को उन्होंने गलत ढंग से दिया था कुछ पनिशमेंट, तो वो ऋषि ने कहा कि तुम शूद्र बन जाओ. तो बोले ठीक है कोई बात. तो शूद्र की अवस्था में, विदुर की अवस्था में उन्होंने पूरे जीवन भर विनीत भाव से, नम्र भाव से रहे वो. और एक समय जब ऐसे आ गया जब वो कुछ सेवा नहीं कर सकते थे, तब क्या किया उन्होंने, जी भर के यात्रा कर ली पूरी, जितनी सारे दिनों का रोज ऑफिस का काम और इनके साथ. अभी ये यमराज हैं तो किसके साथ किसका मुंह देखेंगे रोज, हजारों क्रिमिनल, इसको वो तेल में डालो, इसको इसको और गर्म करो तेल, और तेल का तापमान कितना होना चाहिए, फिर कांटे कितनी होने चाहिए, इसको कितना भूखा मारना चाहिए. रोज रोज दिन भर यही काम करने से आदमी का मन उब जाता है. तो इसलिए विदुर के जन्म में यमराज ने पूरे देश में जितने सारे तीर्थ है वहां पर एकदम सिंपल, कोई उनकी ऐसा नहीं था कि यमराज आ रहे हैं तो खास महाप्रसाद का प्लेट रेडी है या हार रेडी है ना, बिल्कुल लाखों लोगों में से एक कोई बनकर. ये भी एक चीज हम देखते हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े महानुभाव हैं, लेकिन माइंड में, मन के इतना इतने सिंपल है उनकी इच्छाएं. तो वैसे उन्होंने किया, अपना मन तृप्त कर दिया. तो फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि जब यमदूतों ने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान नारायण पुरुषोत्तम, ओरिजिनल पर्सन, आदि पुरुष नारायण है. तो जो मैंने प्रश्न पहले उपस्थित किया था, आज आप और हम किस आधार पर भागवत को समझ सकते हैं कि नारायण ही आदि पुरुष हैं, गोविंदी आदि पुरुष हैं? मैं सोचता हूं आप किसी भी फील्ड में जाइए, यहां पर हॉस्पिटल है तो मेडिसिन का उदाहरण दे सकते हैं. बाकी सारी दवा में ये दवा अच्छी है, कौन कहता है? ओ डॉक्टर कहते हैं. अच्छा वो कहते हैं तो ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, इस विशिष्ट व्यक्ति का जो अनुभव, उनकी बुद्धि, उसको देखकर हम कहते हैं कि ये यहां पे अथॉरिटी है, इस फील्ड के वो अथॉरिटी है. जैसे हमारे त्रिविक्रम प्रभु जब बीमार पड़ गए तो किसी ने कहा कि अरे उनका हार्ट का सर्जरी किसने किया, नहीं 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 वो फलाने फलाने डॉक्टर आए थे, हमको उनमें विश्वास है कि वो इस फील्ड के सबसे बेस्ट हैं। एक क्या थे वो तो मैं पहली बार देखा, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए तो डॉक्टर्स हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं या सर्जन्स हैं, एक है केवल रिदम स्पेशलिस्ट, केवल हार्ट के रिदम के बारे में ये व्यक्ति स्पेशलिस्ट हैं। तो हम देखेंगे हर चीज में हम उस फील्ड के स्पेशलिस्ट लोगों से राय लेते हैं या उनकी बात मानते हैं। तो आप विचार कीजिए, यहां पर दक्षिण भारत में कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, उत्तर भारत में 5000 लोग कम से कम जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, कुंभ मेला में जाओ तो हर एक अखाड़ा भगवान से ही भरा हुआ है। तो इन भगवानों को माने कि ये ब्रह्मा शिव भीष्म नारद प्रहलाद ऐसे लोगों का कहना माने, और ये लोगों का जीवन पूरा अलग अलग है। भीष्म का जीवन प्रहलाद का जीवन में कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रहलाद और नारद जी के जीवन में कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन ये सबकी एक वाच्यता यह है गोविंदम आदि पुरुषम। तो ये मत समझना कि हमारी श्रद्धा बिना किसी फाउंडेशन की है। बाहर जो लोग श्रद्धा के स्थान चुनते हैं, हम भी श्रद्धा के स्थान उसी आधार पर चुनते हैं, कुछ फर्क नहीं उसमें। तो इसीलिए कुंती देवी यहां पर भगवान को अनादि निधनम, मैं आपको मेरे एक भतीजे के रूप में देख रही हूं लेकिन वास्तविक आप अनादि हो, वो जानती है। निधनम, ना कभी आपकी मृत्यु हो सकती है। कई बार नास्तिक सर्कल्स में यही प्रश्न होता है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। हम कहते हैं अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तो मेरी कैसी होगी। भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं, अर्जुन किसी जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, वो केवल शरीर परिवर्तन करता है। तो कोई पूछेगा तो कृष्ण भी तो शरीर परिवर्तन करते हैं ना, कृष्ण कहते हैं कि नहीं, काल नित्य। यहां पे और एक ये शब्द आता है कालम, मैं ही काल हूं। मैं ही काल का मतलब है मुझमें भूत वर्तमान भविष्य ऐसा कुछ होता नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यही ज्ञान मैं आपको जो दे रहा हूं, लाखों वर्ष पहले मैंने सूर्य भगवान को दिया था। तो अर्जुन ने कहा है ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो मुझसे 2 वर्ष केवल बड़े हो, 2-3 वर्ष। बोले नहीं अर्जुन, उस समय आप भी उपस्थित थे एक अलग कैपेसिटी में, आपको स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। अगर भगवान को स्मरण है, भगवान की स्मृति शक्ति नित्य है, तो वो नित्य कैसी हो गई। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, किसी का शरीर नश्वर है लेकिन उसका कॉमन सेंस, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि नित्य है, ऐसा नहीं होता ना। एक ही हिंट दी जाती है, जिसकी स्मृति नित्य है मतलब उसकी बुद्धि नित्य है, मतलब उसका पूरा अस्तित्व नित्य है। क्योंकि शरीर परिवर्तन नहीं हो गया है इसीलिए स्मृति नष्ट नहीं हुई है। आजकल एक कोई बता रहे थे कि टीवी पर एक सीरियल आ गया जिसमें पुनर्जन्म की बातें होती है, और कैसे, हिप्नोसिस द्वारा। अभी हिप्नोसिस, सम्मोहन विद्या, एक मामूली भौतिक विद्या है, सूक्ष्म है, सटल है, लेकिन भौतिक विद्या है वो। तो कोई एक व्यक्ति थी, एक औरत, जो कहती है कि मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है। बोले कि अच्छा, तो उसको उस साइकियाट्रिस्ट ने, जो हिप्नोटिज्म की भी एक्सपर्ट है, पहले उसको हिप्नोटाइज कर दिया। अभी हिप्नोटाइज करना, ये केवल आप अगर हम अगर कॉमिक्स या पढ़ेंगे तो ऐसे हो गया, तो ऐसा नहीं होता। मैंने अच्छी अच्छी ऑथोराइज लोगों से पूछा है और ये किया है, पढ़ा है उसके बारे में। हिप्नोटिज्म के लिए सबसे फाउंडेशन, उसका आधार है उस व्यक्ति की सम्मति। जैसे हमारे नित्य कृष्ण प्रभु हैं, वो भी हिप्नोटिस्ट हैं, आप जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं हिप्नोटिज्म से किसी को अगर दांत निकालना है उसको उतना दर्द होता है या इतना उसको दर्द ज्यादा मन में होता है, इधर कम होता है, लेकिन वो निकालने के लिए मैं उसको हिप्नोटाइज करता हूं, लेकिन पहले उसकी सम्मति देनी पड़ती है। तो ये सम्मति द्वारा वो व्यक्ति धीरे 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 अपनी कोई पास्ट मेमोरीज, गत स्मृतियों को फिर से पढ़ने की या समझने की कोशिश करता है। तो ये महिला को बताया गया कि क्यों आपको फ्लाइट का डर है, तो फिर वो सम्मोहित हो गई, फिर कह रही है कि मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूं। तो बोले खड़ा हो मतलब क्या, आप तो पुरुष नहीं हो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं पुरुष हूं, मैं नेवी में काम करता हूं, मेरा नाम सो एंड सो है और हम अभी फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट में मेरे साथ मेरे ही नेवी के 10-12 लोग हैं, मैंने ऐसा यूनिफॉर्म पहना है, हम यूरोप जा रहे हैं और यूरोप में अब फ्लाइट लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो रही है कि 15 मिनट में हम लैंड करेंगे। अचानक सारे अलार्म सिग्नल्स होने लगे, लाल दिए, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अचानक पता चला कि विमान का एंगल एकदम ऐसे हो गया है और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन स्फोट हो गया। अब क्या हो गया? बोला अब मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर सामने पड़ा हुआ है। अब अपना शरीर सामने पड़ा हुआ है कौन देख सकता है? जो वो शरीर नहीं है वो देख सकता है ना। जैसे हमने अपने कपड़े उतार कर रख दिए टेबल पर, अब कह रहे हैं कि मैं मेरे कपड़ों को देख रहा हूं, मतलब आप कपड़ा नहीं हो, आपने कपड़े उतार कर रखे हैं। उसी तरह से हम शरीर नहीं है, हमने शरीर को उतार कर या शरीर हमारा निकल गया तो हम शरीर को देख चुके हैं। तो ये उनकी गत जन्म की स्मृति और जो विचार, उसके फलस्वरूप उनको ये जीवन मिला जिसमें अभी वो स्त्री रूप में है। और एक ही फेंट स्मृति या एक ही फेंट भावना मन में बहुत पावरफुल है कि फ्लाइट में नहीं जाना, विमान से प्रवास मत करना, विमान से यात्रा मत करना, विमान से यात्रा मत करना। क्यों? यम यम वापी स्मरण भावम, उस समय की जो एक पावरफुल भावना थी वो इस समय आ गई है। भले थोड़ी कम पावरफुल है लेकिन अभी डर लगता है। तो इस प्रकार से भगवान गीता में समझाते हैं कि हमारी भी मृत्यु ये एक टेम्पररी फेज है। और हमारे तथाकथित विद्वान पूछते हैं तो कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई? कृष्ण कहते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अज हूं, अव्ययात्मा हूं, और अर्जुन जो मेरा भक्त है, जो मुक्त होता है, वो भी इसी तरह से अमरत्व प्राप्त कर सकता है। च अनंत्याय कल्पते सो अमृतम अश्नुते, ऐसे जो गीता में शब्द आते हैं वो ये है। अमृतम अश्नुते का इंग्लिश में प्रभुपाद अर्थ करते हैं टेस्टिंग नेक्टर। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में आ सकता है वो इस अमृत का स्वाद ले सकता है, यू कैन टेस्ट नेक्टर। समम विभूम, एक हरिनाम चिंतामणि करके सुंदर ग्रंथ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो वो कहते हैं कि जीव को शास्त्र में वेरी वेरी टेक्निकली करेक्ट टर्म है अणु, आप हम पेड़ पौधे प्राणी पशु पक्षी वनस्पति ये सब अणु हैं, एटम, बहुत छोटे, इतने छोटे के दिख नहीं सकते। और भगवान के लिए शब्द योजित किया गया है विभू, मतलब इतना बड़ा कि उनको देख नहीं सकते, है कि नहीं? हम एकदम छोटी चीज नहीं देख सकते और एकदम बड़ी चीज ठीक से नहीं देख सकते, उसके बीच में जो भी कुछ आ सकता है उसको हम एडजस्ट करके देख सकते हैं। इस विभू भगवान, जैसे किसी को कहा गया कि ये बहुत अमीर व्यक्ति है, क्या है उसके पास? बोले वैसे घर वर तो है नहीं लेकिन अमीर है। बोले ऐसे कैसे? या शास्त्र में उदाहरण है, ये राजा हैं तो इनका राज्य कहां पे है? वो गवर्नमेंट ने ले लिया है। फिर इनकी सैन्य, इनका सैन्य कहां है, रानियां कहां है, राजकुमार कहां है, राज का कोष ट्रेजरी किधर है, पैलेस कहां पे, बोले वो सब कुछ नहीं इनके पास। ये जैसे 1947 में हमने, हमारे सरकार ने सारे जो पुराने ये थे संस्थानिक महाराजाधिराज, ऐसे जैसे हम ओम विष्णुपाद कहते हैं ना, वैसे उनका भी नाम ऐसे ही शुरू होता था, हिज रॉयल हाइनेस महाराजाधिराज द रूलर ऑफ मैसूर। लेकिन मैसूर गया राजा के किसके पास, वो पैलेस गया गवर्नमेंट के पास, ये हो गया म्यूजियम, वो हो गया गोडाउन, फिर भी ये HRH सो एंड सो, जैसे कहते हैं कि लैंड गया और लॉर्ड बाकी रह गया, लैंड लॉर्ड है वो लेकिन लैंड तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा इज नॉट लाइक ए बैंक्रप्ट लॉर्ड जिसका दिवाला निकल चुका है, ऐसे कोई कृष्ण भगवान लॉर्ड नहीं है। अगर विभू हैं तो उसकी संपत्ति का मतलब होता है वैभव। वैभव शब्द तो हम जानते हैं, कई बार हम यूज करते हैं उसको, तो वैभव है किस प्रकार से ये विभू अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। ये जो दुनिया है हमारे सामने, इसको देखकर हमारी आंखें फूट जाती है कि बाप रे कितना सुंदर है, वो सनराइज कितना सुंदर है, वो सनसेट कितना सुंदर है, ये सोना कितना है, यहां पर चांदी कितनी, ये कितना है, वो कितना। तो हम जैसे एक तो रिबेलियस, मतलब जिन्होंने गद्दारी की है, या प्रिजनर जो जेल में पड़े हैं। अब जेल में जो दाल रोटी बनती है, क्या आप कभी चाव से उसे खाने जाओगे कभी कि आज मैंने खास जेल का मेनू मंगाया है? या पागल तो हो गए, जेल का क्यों, कोई खाता है क्या? अरे नहीं, थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट अच्छा होता है, कड़क ब्रेड और एकदम बिना मसाले की ऐसी कोई पानी वाली दाल। अरे वो कंडेम लोगों का खाना है, वो लोग भी अगर चांस मिलेगा तो अच्छा मंगाते हैं बाहर से, सुना है हमने कभी कभी, थोड़े 10-5 रुपए दो किसी को तो वो बाहर का होटल का खाना लगे खिलाएगा उनको। तो कंडेम प्रिजनर लोगों का खाना तो कोई उसमें वैभव नहीं है। तो भगवान चाहते थे तो इस जगत को भी ऐसे एकदम थर्ड क्लास बना सकते थे, और वैसे उन्होंने बनाया है, उनकी सबसे तो थर्ड क्लास है ही वो। लेकिन हमारा दिमाग इतना थर्ड क्लास हो गया कि हम इसको फर्स्ट क्लास समझते हैं, यही एकमात्र समस्या है। और भगवान मतलब यहां पर अगर इतना सौंदर्य है तो वहां पर कितना होगा। लेकिन क्या होता है कि जीव में कॉम्प्रोमाइजिंग वृत्ति आती है कि नहीं ठीक है, जो भी मिल रहा है ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। यह वृत्ति सबसे बड़ी घातक है। श्रीमद् भागवत में यह नहीं बताया गया है कि जो भगवान का द्वेष करता है वो बहुत खराब है, या जिसको भागवत भागवत के सिद्धांत अच्छे लगते नहीं वो अच्छा नहीं है, ना। द बिगेस्ट इंपेडिमेंट टू स्पिरिचुअल लाइफ इज टेकिंग अदर थिंग्स मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ रियलाइजेशन। द बिगेस्ट इंपेडिमेंट, सबसे बड़ा अवरोध वो ये नहीं है कि हमको जप करने में सोते हैं हम, भागवत पढ़ने में मन नहीं लगता, या कभी भक्तों के साथ झगड़ा होता है, या ये होता है वो होता है, ना। आत्म साक्षात्कार से बाकी चीजें अधिक महत्वपूर्ण लगती है, यही सबसे बड़ा अवरोध है। और आप देखेंगे कि बाहर का प्रचार यही है, स्पिरिचुअल लाइफ कैन वेट, एंजॉय नाउ, ये बाहर का ब्रीद वाक्य है, और भक्तों को इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन वेट, स्पिरिचुअल लाइफ नाउ, अब इस समय। अगर हम देखेंगे ना कि विदाउट भागवतम, विदाउट श्रीमद् भागवत, भागवत का ज्ञान के बिना कैसे आस्तिकता नास्तिकता के झगड़े भी जैसे गली के या झोपड़पट्टी के झगड़े होते हैं वैसे दिखते हैं। सच बोलूं तो मुझे तो वही लगता है। ब्रिटेन में, यूके में कुछ धर्म के लोगों ने डबल डेकर के ऊपर, बस वहां होती है लंदन की डबल डेकर, उसके ऊपर एक स्लोगन कैंपेन स्पॉन्सर किया, गॉड एग्जिस्ट्स बीवेयर, भगवान है सावधान रहना, मृत्यु के समय आपका पूरी जांच की जाएगी कि क्या किया आपने क्या नहीं किया, तो नरक में भेजा जाएगा। अब लोग नरक पर विश्वास रखते नहीं, कई लोग समझते हैं कि नरक अच्छा होगा, आज जो है उससे अच्छा होगा वो, तो ऐसे से में लोग रह रहे हैं। कोई लोग, एक बड़ा टेररिस्ट था जिसने लोगों को मारा, बॉम्बिंग किया, किडनैपिंग किया, उसको एक रिपोर्टर ने पूछा तुमको लगता नहीं कि मरने के बाद नरक में जाओगे, बोला ना, बोला भाई ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, क्यों नरक में नहीं जाओगे, बोला मैं पैदा हुआ हूं था नरक में, जहां मैं पैदा हुआ था वो नरक था, उससे और खराब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग निकलते हैं आजकल। तो ये जो भगवान का डर, भगवान का डर, या कई धर्मों कहते हैं ना खुदा से डरो, भगवान से डरो, डर कलयुग में नहीं चलता, नहीं तो महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने लोगों को डर दिखाया होता। भक्ति तीर्थ महाराज एक हमेशा बात कहते थे, गॉड्स लव इज मोर पावरफुल देन गॉड्स लॉज। भगवान का भगवत प्रेम ये भगवान के नियमों से अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली है। तो गॉड एग्जिस्ट, प्रे और गो टू हेल, इसके ऊपर एक नास्तिक लोगों ने एकत्र आकर उन्होंने दूसरा स्पॉन्सर किया एक कैंपेन, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट नाउ एंजॉय योर लाइफ, के भगवान भगवान सब झूठ है, मौज करो। अब सच पूछा जाए तो जो कहता है कि भगवान जीवित है या भगवान का अस्तित्व है, उसे साइंटिफिकली मालूम नहीं है कैसे समझाना लोगों को या अपने आप को भी। आप क्यों कहते हैं कि भगवान अस्तित्व में है, बस मुझे लगता है, मुझे लगता है क्या, अरे व्यक्ति को कोई अलग अलग लगेगा, कोई साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद भागवत, ये किसी भी व्यक्ति को अगर वो ऑब्जेक्टिवली पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। जैसे एक रिपोर्टर ने स्वामी जी के साथ, प्रभुपाद के साथ इंटरव्यू के बाद कहा भक्तों से, भाई इनकी बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही, बट ही सो कन्विंस्ड। मतलब आज तक मैंने लोगों से सुना है कि ये मटेरियल कैसा है, ठीक है, ये फलाना, ये बुक, ये ग्रंथ कैसा है, ऑल राइट, ओके। लेकिन अगर हम किसी के बारे में देखेंगे ये व्यक्ति इस ग्रंथ के बारे में उसके पूरा विश्वास हो गया है, तो वो विश्वास हमको भी आता है। तो उस रिपोर्टर को, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की नित्य सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये बातें जची नहीं, अच्छी नहीं लगी, लेकिन प्रभुपाद का विश्वास उसको लगा कि ये सही विश्वास है। तो क्यों हम इतना जोर देते हैं कि किताबें वितरण करो, लोगों को घर में गीता पहुंचाओ, इतनी सारी अविश्वास की, आधी जिंदा आधी मुर्दा ऐसी भाषा और ऐसा सब पढ़कर लोगों का मन भी ऐसे हो गया है, और एक सेंटेंस कोई इस ग्रंथ में पढ़ेगा तो वो एक वाक्य प्रभुपाद का विश्वास उसके मन में जाएगा, जैसे एक इंजेक्शन का 1 मिलीलीटर 1 ml अगर पावरफुल एक्टिव केमिकल है, वो काम करेगा अपना। तो यही हमारा विश्वास है, इसलिए हम प्रभुपाद के ग्रंथों का, और प्रभुपाद के ग्रंथों में प्रभुपाद ने अपना मत तो कोई प्रदर्शित नहीं किया है, पग पग पर प्रभुपाद, भीष्मदेव ऐसे कहते हैं, नारद मुनि ऐसे कहते हैं, शिवजी ऐसे कहते हैं, प्रहलाद ऐसे कहते हैं, जनक महाराज ऐसे कहते हैं, यमराज ऐसे कहते हैं, ये है वास्तविक वैदिक प्रणाली। जैसे वो प्रभुपाद ने एक वैदिक डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म ऐसे ग्रंथ लिखा वेस्टर्न फिलोसॉफी के ऊपर, प्रभुपाद ने कहा इसका नाम लिखो अ वैदिक व्यू, फिर कहा व्हाट इज माय व्यू वर्थ, मेरे मत का की क्या क्या वैल्यू है। आजकल सब जगह पर मेरे ओपिनियन से, मेरे मत से, मैं ऐसे कहता हूं, अरे आप हैं कौन और आपका फाउंडेशन क्या है आपके मत का, नहीं मुझे ऐसे लगता है। स्पिरिचुअल लाइफ में ये नहीं चलता, गुरु साधु शास्त्र तीनों साथ में चल। सो विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, ताई गौरचंद्र की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैकी ताई घोर प्रेमानंदे। धन्यवाद।